अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
के बीच में पवित्रता और निर्मलता का पावरफुल आभा मंडल जिनका है, ऐसी दर्शनीय मूरत आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत के इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। यज्ञ की स्थापना 1936 में हुई और दीदी का जन्म इन एडवांस 1935 में हुआ। मुंबई महानगरी से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आपने मेडिकल स्टडीज़ की मुंबई में रहते और जब मेडिकल स्टडीज़ पूरी हुई तब 1962 में आपकी भेंट इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ हुई, क्योंकि मम्मा बाबा मुंबई में ही जाया करते थे। मम्मा से पहले भेंट हुई और उसके बाद तो बाबा और दादियों से भी। चूँकि मेडिकल स्टडी की थी तो जॉब भी कर रहे थे मेडिकल, और ये बाबा का ज्ञान लेकर मेडिटेशन भी कर रहे थे, और फिर बाबा की ही राय सलाह से क्लिनिक अपना और अपना सेवा केंद्र खोला। और वो सेवा केंद्र आपको आपके लौकिक पिता ने दहेज के रूप में दिया, और उसके बाद आप वहाँ सेवा करते रहे। आध्यात्मिकता और अपनी मेडिकल स्टडी का लाभ सबको पहुंचाते रहे। लेकिन फिर 1971 में बाबा ने आपको विदेश सेवाओं के लिए सिलेक्ट किया और फिर आप 71 से 78 तक विदेश की भिन्न भिन्न धरनियों पर रहकर सेवाएं की। यहाँ से विदेश जाते ही पहले तो लंदन में रहे, यूके में, उसके बाद विदेश की अलग अलग धरनियों पर गए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, न्यूजीलैंड आदि आदि। और फिर 78 में आपने ऑस्ट्रेलिया को अपना बेस बनाया, स्थायी रूप रहने के लिए उसको चुना। और फिर 78 से लेकर 2008 तक आपने वहाँ रहकर सिडनी में एशिया पैसिफिक रीजन में बाबा की सेवाओं का विस्तार किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज की तारीख में एशिया पैसिफिक रीजन में करीब 17-18 देश हैं जहाँ बाबा के बच्चे रहते हैं, सेवा केंद्र खुले हैं, नियमित अध्ययन करते हैं ईश्वरीय पढ़ाई का और बाबा के सभी नियम और मर्यादाओं का भी पालन करते हैं। और उसके बाद तो फिर बाबा ने आपको हेडक्वार्टर ज्ञान सरोवर में बुला लिया, क्योंकि मनोहर दादी अव्यक्त हुए तो वहाँ की सीट खाली हुई। तो हम कहेंगे वर्तमान में आपके कंधों पर, एक कंधे पर विदेश की धरनी की जिम्मेवारी है और दूसरे कंधे पर भारत देश के यज्ञ की जिम्मेवारी है। तो वर्तमान में हम कहेंगे आप एशिया पैसिफिक रीजन के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर हैं, और चूंकि दादियाँ अव्यक्त हो गई हैं तो वो भी जिम्मेवारियाँ आपके कंधे पर हैं। तो वर्तमान में आप यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं, या यूं कहें कि समय के साथ साथ आपके कंधों पर जिम्मेवारियाँ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जितनी ही जिम्मेवारियाँ बढ़ती है, हमने देखा है दीदी, उतना ही बहुत इजी रहते हैं, भल बिजी रहते हैं जिम्मेवारियों के कारण, लेकिन बिजी के साथ साथ इजी रहने का जो आर्ट है वो दीदी से सीखने योग्य है। और इतना ही नहीं, जितनी जिम्मेवारियाँ फिर उतना ही उपराम अवस्था भी हम उनकी देखते हैं, और बहुत कम चंद शब्दों में अपना कारोबार निपटाते हैं, चाहे वो किसी से वार्तालाप हो, चाहे वो क्लास हो, बहुत चंद शब्दों में बाबा के गुह्य राजों को पहुंचा देते हैं। कारण कि बाबा ने जो भी नियम मर्यादाएं श्रीमत दी है उसको पूरा पूरा जीवन में उतारा है, और इसलिए जीवन में इतनी वो पावर आ गई है, चंद शब्दों में ही सब कुछ काम हो जाता है। तो ऐसी हमारी शक्तिशाली निर्मलता की मूरत दीदी से हम सुनेंगे लक्ष्य प्रमाण, लक्षणों की धारणा हमारे भीतर हो उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। तो सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी। खुशखबरी है कि दीदी पहले इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और बाद में आपके लिए खुली मार्जिन है, आप चाहे जो प्रश्न पूछना चाहे दीदी से पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न ज्ञान से रिलेटेड हो सकता है, योग से, धारणा से, सेवा से, या दीदी भारत की सेवा में भी है तो विदेश की सेवा भी की है और अभी भी कर ही रहे हैं, या बाबा के ज्ञान में कैसे आए, वो सारे अनुभव आपको जो सुनना पसंद हो आप वो सुन सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन के आधार पर फिर दीदी आंसर करेगी। ठीक है, तो अभी दीदी से पहले सुनते हैं आज के विषय में, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। माताएं थोड़ा ऐसे ऐसे बैठे नजदीक नजदीक, लक्ष्य क्या है आप लोगों का? हाँ, क्या बनना, क्या बनना है? बाप समान बनना, देवता बनना। और देवताओं के लक्षण क्या है? सर्वगुण संपन्न, सुलक्षणा संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो कहाँ तक हम बने हैं वो हर एक अपने आप को चेक करें। बाबा कहते हैं हर एक को अपना टीचर बनना है, हर एक को अपने अपना आप को चेक करना है। चेक करके चेंज करना है, अपने आप को परिवर्तन करना है। ऐसे नहीं कहो को ये तो मेरी पहले से ही आदत है। कई लोग ऐसे कहते हैं ना, देर से उठने की मेरी पहले से ही आदत है। पढ़ाई पढ़ती थी तो भी देरी तक सो सकती थी, पर उठना नहीं होता था। तो पुराने संस्कारों को खत्म करके नए संस्कार धारण करना है, तब नई दुनिया में जाएंगे। तो सर्वगुण संपन्न कौन से है? अंतर्मुखता, गंभीरता, हर्षित चेहरा, सहन शक्ति, नम्रता, स्वीटनेस। हर एक को सम्मान देना, रॉयल्टी, अथक कॉन्फिडेंस हो अपने में, प्योरिटी, ज्ञान, उदारता, सच्चाई, कल्याणकारी, लाइट, संतुष्ट, निडर, एक्यूरेट। डिसिप्लिन मर्यादाएं, स्वच्छता, हिम्मत, अडोल, रहम, ऑनेस्ट, धैर्यवाद, सरेंडर, फ्लेक्सिबल, मोल्ड वन। बाबा कहते हैं ना मोल्ड होने वाला गोल्ड है, तो फ्लेक्सिबल मोल्ड होने वाला, शांत, नष्ट मोह, सहयोगी सबके, दृढ़ता, आज्ञाकारी, सिंपल, केयरफ्री, लवफुल, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, पैकअप करने की शक्ति, ये सब हमारे में होनी चाहिए। 16 कला कौन सी है? पहली है सोचने और रचने की कला, दूसरा है खुश और संतुष्ट रहने की कला, तीसरा है सीखने और सिखाने की कला, चौथा है स्वस्थ रहने की कला। पांचवा है सुधार और विकास करने की कला। छठा है काम और आराम करने की कला। सात है भाषण करने की कला। आठ है पत्र लिखने की कला। नौ है श्रेष्ठ व्यवहार करने की कला। दस है मित्र व अपना बनाने की कला। ग्यारह है पालना करने की कला। 12 है हास्य या विनोद की कला। 13 बेकार को अच्छा बनाने की कला। 14 व्यवस्था एवं प्रशासन की कला। 15 है नेतृत्व की कला। और 16 है गुप्त रखने और प्रत्यक्ष करने की कला, क्योंकि दोनों होना चाहिए। जो गुप्त रखना है वो गुप्त रखना, और जो प्रत्यक्ष करना है वो प्रत्यक्ष करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बड़े बड़े विकार तो जानते हैं हम, परंतु उनका सूक्ष्म रूप ही नहीं होना चाहिए। तो पहला है ईगो, अहम। क्या है कि वो लास्ट में जाता है, ये फीलिंग कि मैं होशियार हूं, मैं ऊंच कुल का हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं करेंगे ना। तो जिसके अंदर ईगो है ना, वो अपने को इनसिक्योर समझते हैं, सुरक्षित नहीं समझते हैं, उनमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, और इस कारण दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं और अंदर कुछ होगा बाहर कुछ दिखाएंगे, अंदर दुखी होगा और बाहर से खुश हंसता रहेगा। बात बात में मैं बाबा कहते हैं मैं जब बोलो तो मैं आत्मा हूँ ये याद करो, मैं ऊंच कुल का हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी ऐसी अपने में ईगो ना हो और नाजुक होते हैं। दूसरे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं अपसेट हो जाते हैं, खुद किसी को नहीं देगा पर दूसरों से उम्मीद रखेगा। और ऑथोरिटी से बात करेंगे और जो अपना आइडिया है सबको कहता है, बहुत सी होता है औरों का टीका करता है, तुमने ये ठीक नहीं किया ये ठीक नहीं किया, सबसे पहला विकार है देहभान। बाबा रोज रोज कहते हैं देही अभिमानी भव, तो जिसका देहभान है ना उनको अपने पर दया आती है, मुझे कोई पूछता नहीं। मेरी बहन मेरे से होशियार है उसको सब पूछते हैं मुझे नहीं पूछते हैं, नर्वस हो जाते हैं, भाषण करना है वीआईपी से मिलना है तो हिम्मत नहीं होती है, कॉन्फिडेंस नहीं, नर्वस, बाह्यमुखी, जहां भी जाएंगे देखेंगे क्या क्या श्रृंगार है, कारपेट कैसा है, फर्नीचर कैसा है, रास्ते में धीरे देखेंगे कि किसने साड़ी ब्लाउज मैच किया है या नहीं आदि आदि, तो बाह्य बातें देखते रहेंगे और अपना नखरा ऐसा करेंगे तो सबको आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। और आजकल तो क्या फैशन है, पतली कमर, वजन कम करना, खास करके जो जवान होते हैं ना वो कोशिश करते हैं वजन कम करने के लिए, तो डाइटिशियन के पास जाते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कितना खाना चाहिए, तोल तोल के खाते हैं, एक ही रोटी खानी है, इतना ही सब्जी खाना है, ये नहीं खाना है आदि आदि, इतने तक के। हमारे पास एक बहन थी बैले डांसर, तो उसको वजन बढ़ाने नहीं देते थे उसके टीचर वगैरह, और यंग थी भूख तो लगती है, तो क्या करती थी, खाती थी, फिर मुंह में अंगुली डालकर वॉमिट कर देती थी। और जो देवान वाले हैं, अपना समय, शक्ति, धन शरीर को श्रृंगारने में लगाते हैं। हमारे पास सिंधी माताएं हैं, वो क्या करेंगी, शादी में जाना है तो ब्यूटी सैलून में जाएंगी, बाल बनाएंगे और चेहरा वो करेंगे, और उनको लज्जा ज्यादा आएंगे, चिंता होंगे। और जो समाज करते हैं, दुनिया वाले करते हैं, वही करना है, नहीं तो लोग लाज की डर रहता है, लोग क्या कहेंगे, सफेद कपड़े पहनेंगे लोग क्या कहेंगे। हंसना, मजाक करना और औरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, पर चिंतन तो देखना है, ये छोटे मोटे विकार तो नहीं है। काम विकार का सूक्ष्म रूप क्या है, प्रभावित होना, कामना रखनी, इच्छा रखनी, नाम रूप का प्यार, आकर्षित होना, और फैमिलियरिटी, कुछ भी हुआ, फ्री टाइम हुआ, फ्रेंड को फोन किया, आज क्या खाया, क्या किया, ये कपड़े कहाँ से खरीद किए, कितना खर्च किया, आदि आदि। तो ऊपर नीचे की बातें बाबा को बताने के बजाय फ्रेंड को बताएंगे, अच्छी बात भी उनको बताएंगे, बुरी बात भी उनको बताएंगे। हम कहते हैं बाबा का सहारा लो, पर वो लोग लेंगे एक दो का सहारा, मोह की निशानी। मोह से क्या होता है, एक दो के ऊपर आधारित हो जाते हैं, मेरा बच्चा, तो अपने बच्चों के लिए डिसाइड करेंगे क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। तो जैसे हक जमाते हैं, और जिसमें मोह होगा, बल माँ है, चार बच्चों में से एक में ज्यादा मोह है, तो क्या करेंगी, पहले उसके लिए चीज निकाल के रख देंगे कि उसको ये अच्छी लगती है, रख देंगे। तो पहले उसको फेवर करेंगे। और एक माता हमको मिली, कहती है मेरा बच्चा अमेरिका गया, उसको जलेबी अच्छी लगती है। अभी अमेरिका में जलेबी कौन खिलाएगा, तो मैं भी जलेबी नहीं खाती। तो जिसके साथ मोह है वो दुखी है, तो खुद भी दुखी होते हैं। बीमार होगा बच्चा और माँ बाप ज्यादा दुखी होते हैं। तो ये बाबा कहते हैं दे के संबंधी सबसे मोह छोड़ो। एक मेरे से बुद्धि योग जोड़ो, परंतु मोह जल्दी नहीं छूटता, ईगो जल्दी नहीं छूटता। काम विकार मैंने देखा है छूट जाता है, पर मोह जल्दी नहीं छूटता। लोभ की क्या निशानी, लोभी है ना, कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ये चाहिए वो चाहिए, जो अच्छी चीज देखेंगे खरीद कर लेंगे, चाहे कितनी भी साड़ियां होंगी खरीद कर लेंगे। खाना का खाने का लोभ होता, स्पेशली कोई कोई चीज अच्छी लगती है तो सोचते हैं बहुत दिन हुआ खाया नहीं है, चलो बनावे। घर वाले को कहेंगे बनाओ, चलो भेलपुरी है, पकौड़ा है, दही वड़ा है। यहाँ तो टूली वाले के पास लाइन लगती है। विदेशियों को तो छुट्टी देते हैं, तो खाने के बाद पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को खाने के बाद मिठाई खाने की आदत है, पहुँच जाते हैं। अपने पसंद की खाने की चीज होंगे तो रोज से ज्यादा खाएंगे, पसंद नहीं है कहेंगे आज तो भूख नहीं है। लोभी है, स्वार्थी है, कंजूस, कितना भी पैसा होगा कोई मांगने आएगा 50-100 रुपया दिया तो समझते हैं मैंने बहुत दिया। और नई चीजें खरीदते रहेंगे, पुराने निकालेंगे नहीं। बूढ़ियों का कबट देखेंगे कितना भरा पड़ा है, नया पुराना, क्रोध। चिड़चिड़ापन, अधैर्य, सहन शक्ति की कमी, अपसेट हो जाते हैं, फोर्सफुल। बच्चे को कोई चीज नहीं मिला तो क्या करेगा, जमीन पछाड़ेगा, दरवाजा पछाड़ेगा, और जिसके ऊपर क्रोध आएगा तो क्या करेगा, वो सामने से आएगा ना तो यहां से चला जाएगा, क्योंकि सामने आएगा ओम शांति करना पड़ेगा या हलो करना पड़ेगा, इसलिए नजर से नजर ही नहीं मिलाते, जैसे देखा ही नहीं है। और क्रोध आने का कारण क्या है, जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई, जैसे काम विकार की अपेक्षा है। माता पवित्र रहती है तो भाई को खूब क्रोध आएगा, मारपीट करेगा, और क्रोध आता है तो दलील आर्ग्यूमेंट करता रहता है। अलबेलापन, अलबेले है, ठीक ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, और फिर बहानेबाजी देंगे, मैंने समझा फलाना करेगा, तो सब कहेंगे फलाना करेगा फलाना करेगा, कोई दिक्कत। भूल गया, बहाना ये बताएंगे हमें भूल गया, और फालतू खर्च करेगा, तो टाइम मनी एनर्जी संकल्प फालतू, और कहेंगे मैं किसी की परवाह नहीं करता, आलस्य, वो भी बहाना करेगा कि मैं तो थक गया हूं, आज पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, देखो बुखार का बहाना करें तो मालूम पड़ जाए, थर्मोमीटर से कोई भी माप ले, पर पेट में दर्द कौन देखने जाएगा, या सर का दर्द कौन देखने जाएगा, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं, जिम्मेवार नहीं, उनको आराम पसंद है, कुर्सी में बैठा रहेगा, उमंग उल्लास नहीं। तो जितना उमंग उल्लास भरेंगे इतना आलस्य छूट जाएगा, उमंग हो कि मुझे वैजयंती माला में आना है, 16108 की माला में आना है, और दृढ़ता हो, ईर्ष्या, तो ये है कि कंपेयर करने की आदत होती है, और कोई उनसे ज्यादा होशियार है तो ईर्ष्या के वश क्या करेंगे, उनकी बुराई देखेंगे, कमी देखेंगे और औरों को कहेंगे तुम समझते हो ये ऐसा है पर ऐसा नहीं है, ये है वो है, उसमें क्या क्या खराबी है वो देखते रहेंगे। कारण क्या? स्वमान की कमी। और कंपेयर करने के संस्कार, कंपटीशन करने के संस्कार और अपने को असुरक्षित समझते हैं। वैर भाव, तो वैर के कारण मारपीट तो करते हैं और बदला लेने की आशा रखते हैं और कायदा अपने हाथ में ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया, कोई मर गया या किसी को चोट लगी तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, लाठी लेकर उसको मारपीट करके वहीं ख़त्म कर देते हैं ड्राइवर को। ऐसे नहीं कि पुलिस को कंप्लेन करे और केस चलावे, नहीं, और जैसे बाबा कहते हैं ना खगे है, खगे क्या करते हैं, दूसरे ऊपर जाते हैं ना उसको नीचे खींच लेते हैं। तो क्या है ये वैर की भावना, तो इसके लिए जितना हम देही अभिमानी रहेंगे तो क्या होगा, मेजॉरिटी विकार को हम जीत सकते हैं। एक भी विकार आया दूसरों को ले आएगा, इसलिए बाबा कहते हैं माया से बड़ा सावधान रहो। माया देखती है आपका ध्यान नहीं है, लगाएंगे चमाट। फिर बाबा को कहते हैं बाबा माया पूरा होना हमके ऊपर, हमारे ऊपर हमला ना करे, और बाबा क्या कहते हैं माया के, कहता हूँ जोर से लड़ो, परीक्षा लो। तो इसलिए हमें बाबा की याद से शक्ति लेकर मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, तो हम सब विकारों को जीत सकेंगे। तो केयरलेस के बजाय केयरफुल रहना है, ईर्ष्या के बजाय स्वमान में रहना है, आलस्य छोड़ने के लिए उमंग उत्साह भरना है, ईगो को छोड़कर नम्र बनना है। बल्कि दिन भी हमारे में विशेषता है और बाबा हमको विशेषता में भी विशेषता बढ़ता है, जैसे कहते हैं ना सोने में सुगंध भरता है। हमारे पास आर्टिस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, कहा कि जब ओपनिंग शो होता था हम नर्वस हो जाते थे, भल कितने भी पॉपुलर नंबर वन थे पर कभी कभी नर्वस हो जाते थे। एक गायक था बहुत नंबर वन था, एक दिन शुरू के शो में एकदम नर्वस हो गया। फिर हमारा भाई जो पियानो बजाने वाला था उसने उसको कहा चलो थोड़ा योग करो, शांति में बैठो, तुम गा सकते हो, और उसको तैयार किया और तैयार हो गया। तो क्या है कि ज्ञान योग से हम और भी विशेष बनते हैं, इसलिए जो नम्र होते हैं वो क्या करते हैं, अपना अभिमान नहीं करते कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, बाबा की कृपा से मैं विशेष हूँ, ये बुद्धि में रहता है। ओम शांति।
अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो जैसे कहा किसी को प्रश्न हो तो सामने आएंगे प्रश्न पूछने के लिए। है किसी के मन में प्रश्न, आ जाओ जल्दी।
ओम शांति। रेस्पेक्टेड सिस्टर, little bit confusion between two statements, that it is always mentioned to make the lakshya to be like Bab Saman or the Vishwa Kalyanakari, and it is also mentioned that deha sahit deha ke sare sambandho ko bhul ek musko yaad karo. So somewhere it looks little bit controversial, when everything one forgets everything including self, then the welfare activity remains for whom, kiske liye kalyan karna hai, जब खुद को भी भूल जाएं, एक अपने को समझकर सारे विश्व को भूल जाएं, तो कल्याण किसको करना है?
विश्व को नहीं भूलना, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो क्या करते हैं यूजुअली, मैं मेरा परिवार, उसके सिवाय किसी का भला करने के लिए सोचते नहीं हैं। परंतु जैसे बाबा बेहद का है, विश्व का सोचते हैं, सबके ऊपर रहम है, ऐसे हमें भी सबके ऊपर रहम कर उनके कल्याण के लिए बाप का मैसेज देना है, क्योंकि बाप को जानेंगे डायरेक्ट बाप से शक्ति लेंगे। हम तो उनको लिमिटेड मदद कर सकते हैं, तो इसलिए हमें उनसे मोह तोड़ना है। मेन बात ये है, ये शरीर में भी मोह ना हो और संबंधियों में अलौकिक परिवार में। कई बार क्या होता है कि जिसका मोह का संस्कार है ना, चलो घरवालों से मोह छोड़ा, टीचर से मोह हो जाता है, तो उससे भी मोह ना हो।
और कोई किसी को प्रश्न दूसरा है? और कोई भाइयों की तरफ से एक नहीं पूछेंगे तो हम वाइंड अप कर देंगे. है किसी के पास प्रश्न? नहीं है. सभी प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त. हाथ उठा रहे आप? अभी तो बहुत सारे हाथ उठ रहे. बस एक ही. हाँ, एक बहन की तरफ से हो गया, एक भाई की तरफ से. जब जब योग में बैठते हैं तब दुनिया भर की समस्याएं दिमाग में घूमती रहती हैं और योग में वो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है. भूले हुए विषय भी उसी वक्त दिमाग में आ जाते हैं. जो कभी याद नहीं आते हैं, भूले हुए रहते हैं, वो वाली बातें भी उस समय याद आ जाती है योग में. किसी का वचन तो किसी का व्यवहार तो किसी की लेन देन तो किसी को सहयोग, वो सब योग में ही आता है. तो इसको कैसे दूर करें?
बाबा कहते हैं फुल स्टॉप करो. तो ये अपने में शक्ति धारण करनी है कि जो फालतू संकल्प आए उनको फुल स्टॉप करें और उसी समय मन को स्वदर्शन चक्र फिराओ, मुरली का मंथन करो, ज्ञान का चिंतन करो, बाबा की महिमा मन ही मन में करो. तो क्या है, मन को बिजी रखो तो मन फालतू संकल्प में नहीं रहेगा. तो ये समझो कि दुनिया वालों की समस्या मुझे नहीं सॉल्व करनी है, ये बाबा का काम है. मेरा काम है सबको बाबा का परिचय देकर बाबा से कैसे शक्ति लेवे, कैसे विश्व के मालिक बने, ये मेरा काम है. तो इसलिए फुल स्टॉप की हमारी शक्ति बढ़ानी है.
तो बहुत सुंदर. जैसे गाड़ी भी आप चलाते हैं तो दो बातें सीखनी होती है, कैसे गाड़ी को रोकना है और कैसे गाड़ी को मोड़ना है. तो भाई जी आपका आंसर आ गया, एक फुल स्टॉप और एक टर्न करना आना चाहिए. तो फिर योग में आने वाली समस्याओं से हमें राहत मिल जाएगी. तो यहाँ पर हम पूरा करते हैं. आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो पूरा ही एक घंटा आप दीदी के संग, दीदी के सानिध्य में बैठकर ज्ञान गंगा स्नान किया है. हम गंगा स्नान तो रोज करते ही हैं, परंतु उस अनुभवी रथ से सुना है जिन्होंने बाबा के उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा हुआ है. तो सभी भरपूर हुए. हाँ, दिल खुश हुई. दुनिया के अंदर जितनी बड़ी पोजीशन वाले लोग होते हैं उनसे मिलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, बस 5 मिनट मिलना है, बस 5 मिनट मिलना है. और यहाँ पे इतनी बड़ी पोजीशन, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों में धारण करने वाले आपसे भी पहले आकर बैठे थे. हाँ, पूरा एक घंटा. दुनिया में तो नाराज हो जाए लोग कि हमको ऐसे कैसे आपने पहले बुला लिया, लोग आए नहीं है. हाँ, और दीदी की निर्माणता कि दीदी आपसे भी पहले पहुंचे और आते ही शांति में बैठकर जो जो थे उनको नजरों से निहाल करते रहे. तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आए.
ओ बाबा तुम सावनना है, एक यही तमन्ना है। ओ बाबा तुम सावनना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है। चाहना है ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।